أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سال بسال جماعت احمدیہ کی جلسہ سالانہ کی ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور شاید اتفاق سے بعض حالات کی مجبوری سے کوئی ایک آدھ سال ہی ایسا آیا ہوگا جبکہ گزشتہ جلسہ سالانہ کے مقابل پر کسی آنے والے جلسہ سالانہ کی حاضری کم ہوئی ہو، لیکن اس عمومی تدریجی ترقی کے علاوہ بعض ایسے ادوار بھی آ سکتے ہیں اور ہم ان ادوار کو خوش آمدید کہتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غیر معمولی ترقی عطا فرمائے اور مہمانوں کی آمد ہماری توقع اور عام اندازوں کے مقابل پر بہت بڑھ جائے، خصوصاً جب آپ دنیا بھر میں دعوت اللہ کر رہے ہیں اور ایک نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک نئے دعوت اللہ کے دور میں داخل ہو رہا ہے، تو پھر اپنے رب پر حسن ظن کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس دعوت میں برکت بھی ہوگی، ان کوششوں کو ہماری توقعات سے بڑھ کر میٹھے پھل لگیں گے اور بکثرت لوگ احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ توقع اور حسن ظن اپنے رب پر رکھ کر جب ہم سفر کریں گے تو لازماً بکثرت دنیا بھر سے مختلف قوموں میں سے نئے داخل ہونے والے جوق در جوق سلسلے میں داخل ہوں گے، اور جب ہم ان کو دعوت دیں گے اپنے مرکز میں آنے کی اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کی تو لازماً گزشتہ اندازوں کے مقابل پر آئندہ بہت زیادہ مہمانوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ تو وہ اندازے ہیں جو پھیلتی ہوئی دعوت کے نتیجے میں تبھی اندازے ہیں، لیکن ایک ایسا جلسہ سالانہ بھی آنے والا ہے جسے جبلی کا جلسہ کہہ سکتے ہیں، جس میں ان غیر متوقع اضافوں سے بھی علاوہ کچھ اضافے متوقع ہیں، کیونکہ جبلی کا سال ایک ایسا خاص ولولے کا سال ہوگا کہ کوئی بعید نہیں کہ ایسے بیمار بھی چلے آئیں جن کو چرپائیوں پر اٹھا کر لوگ لا رہے ہوں، کوئی بعید نہیں کہ ایسے بستر پر پڑے ہوئے بے قرار ہو کر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو مجبور کر دیں کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے سفر سے میری زندگی کو خطرہ لاحق ہے تو مجھے ربہ پہنچ کے مرنے دو بجائے اس کے کہ یہاں اپنے گھر میں اکیلے اپنے بستر پر جان دوں۔ تو ایسے غیر معمولی ولولے اور جوش کے سالوں میں تو جو لوگ عام طور پر نہیں آیا کرتے یا نہیں آ سکتے وہ بھی چلے آیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ وہ سوال ہے جس کی طرف میں جماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ متعدد سالوں کا تجزیہ کرنے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دن بدن جماعتی قیام گاہوں کے مقابل پر انفرادی قیام گاہوں میں ٹھہرنے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور معاشرتی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ ایک طبعی امر ہے۔ قادیان کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگ یہ پسند کیا کرتے تھے کہ اجتماعی قیام گاہوں میں ٹھہریں، اور بہت اچھے اچھے دنیاوی معیار کے احمدی جن کا عام رہن سہن کا معیار اس زمانے کے لحاظ سے بہت اونچا تھا، وہ بھی پرالی اور کھوری کے اوپر لیٹ کر باقی جماعت کے ساتھ رہ کر اپنا وقت بسر کرنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور ایسا ایسا پیارا ذکر الہی کا ماحول ہوا کرتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ باتیں بیان کیا کرتے تھے کہ ان کی راتیں ذکر الہی میں رس بس جاتی تھیں اور غیر معمولی لذت پاتے تھے۔ لیکن وہ ایک خاص ماحول تھا، وہ ان خاص دنوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ماضی کا قصہ بن گیا۔ پھر معاشرتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، پھر خاندانی یونٹ میں زیادہ کشش پیدا ہو گئی، پھر آرام طلبی زیادہ ہو گئی، نتیجے یہ نکلے کہ لوگ یہ زیادہ پسند کرنے لگے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں اور اجتماعی قیام گاہ میں نہ جائیں۔ اس رجحان کو تو اب ہم تبدیل نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ جب مجبوری درپیش ہو اور یہ اعلان کرنا پڑے کہ یہ سب خاندانی یونٹ کو توڑ کر اپنی اپنی قیام گاہوں میں چلے آؤ، یہ تو ایک الگ استثنائی صورتحال ہو سکتی ہے، ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ مثلا بارش کے وقت ہمیں مجبوراً بعض اوقات یہ کہنا پڑا کہ جو خیمے خاندانوں کو الاٹ کیے ہوئے تھے وہ اب خاندانوں کے لیے نہیں رہیں گے کیونکہ اس میں کم تعداد سمائی جاتی ہے، اس لیے عورتیں الگ ہو جائیں مرد الگ ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے جماعت نے فوراً تعاون کیا۔ تو ایسے حالات میں تو اب بھی یہی ہوگا، لیکن بالعموم اس رجحان کو اب ہم بدل نہیں سکتے۔ چنانچہ جماعت کے ان افراد پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جو انفرادی طور پر مہمان رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے شوق کے ساتھ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو انفرادی طور پر رکھتے چلے آئے ہیں۔ دو قسم کے مہمان ہیں جن کو انفرادی طور پر گھروں میں مہمان ٹھہرایا جاتا ہے، ایک وہ جو ذاتی تعلقات کی بنا پر بعض دوستوں کے پاس یا عزیزوں کے پاس چلے آتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میرے ذہن میں وہ مہمان ہیں جن کے ساتھ بعض گھر والوں کے کوئی بھی ذاتی مراسم نہیں ہوتے، بعض اوقات انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوا ہوتا، لیکن وہ اپنے گھر کے کمرے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خاطر انتظام کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ایسے مہمان جو نازک طبع ہیں، جو اجتماعی قیام گاہوں میں نہیں ٹھہر سکتے، وہ ہمارے گھر ہمارے کمرے میں آ کے ٹھہریں۔ اور بعض دفعہ غیر ملکی مہمانوں کے لیے ان کے معاشرے کے مطابق فلش سسٹم وغیرہ کا، جو جدید سہولتیں ہیں ٹوائلٹس کی، وہ مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ تحریک کی گئی، اور ربہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محض اس نیت سے اچھے غسل خانے بنائے ہیں تاکہ جب سال بہ سال مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان تشریف لائیں تو وہ ایسے کمرے ان کو پیش کر سکیں جن کے ساتھ ان کی سہولت اور مزاج کے مطابق غسل خانے بھی ہوں۔ یہ جو ضرورت ہے پرائیویٹ قیام گاہوں میں اجتماعی انتظام کے تابع مہمان ٹھہرانے کی ضرورت، اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑنے والا ہے۔ اس لیے اس کے دو ہی حل ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اول یہ کہ جن لوگوں کے مکان بن چکے ہیں ان کو یہ تحریک کی جائے کہ اپنی ضرورت ہو یا نہ ہو محض للہ گھر میں ایسے کمروں کا اضافہ کریں جو خالصتاً جلسہ سالانہ کے مہمانوں کی خاطر تعمیر کیے جائیں، اور جہاں تک توفیق ہو ان کے ساتھ غسل خانے وغیرہ بھی ایسے بنائیں جن میں ایک زیادہ تعداد میں مہمان آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس نیت کے ساتھ اگر گھروں میں کچھ ہر گھر میں ربوہ کے کچھ کمروں کا اضافہ ہو جائے تو اس سے ایک غیر معمولی سہولت مہیا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو بہت ہی ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ خالی پلاٹوں میں گھر تعمیر کیے جائیں۔ میں نے جو جائزہ لیا ہے مجھے دیکھ کر یہ تعجب ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں ابھی خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو آباد کیا جائے تو ہمارے مہمانوں کو موجودہ جگہ سے تقریباً 3 گنا زیادہ جگہ مہیا ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 7 کمرے بھی بن جائیں جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے اور یہ خالی پلاٹ آباد ہو جائیں تو بہت محفوظ اندازے کے مطابق ہم مہمانوں کے لیے موجودہ جگہ سے 3 گنا زیادہ جگہ مہیا کر سکتے ہیں، شاید اس سے بھی بڑھ جائے تعداد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہمان آج مہمان بنے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے خالی پلاٹس موجود ہیں اور وہ اپنے گھر ٹھہرنے کی بجائے اپنا گھر بنا کر کسی اور کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے لیے گھر بنائیں گے تو اپنے کمرے کے لیے بھی اپنے کمرے میں خود ٹھہر کر باقی کمرے مہمانوں کے سپرد کر سکتے ہیں، اور جو کمرے وہ خالی کریں گے ان میں پھر دوسرے مہمان ٹھہر سکتے ہیں۔ اس وقت جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ 1 اور 2 کی نسبت سے اگر ہم بیرونی نئی آبادیوں کو شامل کر لیں تو 1 اور 2 کی نسبت سے خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں۔ ان نئے مکانوں میں زیادہ مہمان اس لیے سما سکیں گے کہ بہت سے ایسے پلاٹ والے احباب ہیں جو مالک ہیں پلاٹس کے جو باہر رہتے ہیں اور ہر سال جلسے پہ خود آ ہی نہیں سکتے، اس لیے اگر وہ مکان بنائیں گے تو لازماً وہ مہمانوں کے کام آئیں گے۔ تو ان سارے امور کو مد نظر رکھ کے میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ 3 گنا تعداد بڑھ سکتی ہے مہمانوں کی، یعنی 3 گنا بڑی ہوئی تعداد کے لیے سہولتیں مہیا ہو سکتی ہیں۔ جو خالی پلاٹس کے مالکان ہیں ان کا دراصل ان پلاٹس پر شرعی یا اخلاقی یا قانونی حق باقی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب پلاٹ ان کو دیے گئے تھے جماعت کی طرف سے تو اس معاہدے کے ساتھ دیے گئے تھے کہ 6 مہینے کے عرصے میں تم اگر اس پر مکان تعمیر نہیں کرو گے، خواہ وہ چھوٹا مکان ہی کیوں نہ ہو، تو تم اپنے حق کے ملکیت کو کھو بیٹھو گے۔ پھر جماعت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ قیمت تمہیں دے کر، جس قیمت پر تم نے یہ پلاٹ خریدے ہیں، کسی اور کو اس قیمت پر یا کسی اور قیمت پر یہ پلاٹ دے دے۔ تو آج تک تو اس حق کو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، مگر ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اس حق کو استعمال کیا جائے۔ مگر جس تیزی کے ساتھ سلسلے کی ضروریات بڑھ رہی ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ جماعت اگر مجبور ہو تو اس حق کو استعمال کرے۔ کسی کا حق نہیں ہے کہ ربوہ میں خالی جگہوں کو لے کر بیٹھا رہے اور وہ جگہیں کسی کام نہ آ رہی ہوں، اور سال ہا سال گزر گئے، کوئی معمولی عرصہ تو نہیں ہے۔ 1949-50 میں جو جگہیں الاٹ کی گئی تھیں اب اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 34 سال گزر چکے ہیں۔ 34 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ تو نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ مکان نہیں بنا سکتے تو جگہ چھوڑ دیں، ہمیں اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں، بیوت الحمد کے ہی کام آئیں گے اور کچھ نہیں۔ تو بہت سے غرباء ہیں بیچارے جو محروم ہیں جگہوں سے، ان کو یہ الاٹ کر دی جائیں گی، اور چونکہ سستی قیمت پر دیے گئے تھے نسبتاً سستی قیمت پر اب بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو دوست بھی مکانوں کے مالک فرضی مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرضی مالک اس لیے کہ حقیقی مالک تو وہ نہیں رہے، شرائط کے مطابق ان کا حق ملکیت ختم ہو چکا ہے، इसलिए जो दोस्त भी अब फर्जी मालिक बन के बैठे हुए हैं उनको मैं 6 महीने देता हूँ। 6 महीने के अंदर या तो मकान की तामीर शुरू करवाएं या जमात के सामने अपने वजह जवाज पेश करके इजाज़त हासिल करें कि 6 महीने के अंदर हमारे लिए मकान शुरू करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इतनी मज़ीद मुद्दत अगर हमें मिल जाए तो हम शुरू कर सकेंगे। और अगर ये दोनों बातें ना करें तो फिर उनको इस फर्जी मलकियत से भी हाथ धोने पड़ेंगे और ये मलकियत किसी और के नाम जमात मुंतकिल करेगी जो जल्दी मकान बनाने की जमानत देगा। चंद साल सिर्फ रह गए हैं जुबली के जलसे को और तामीर के काम ऐसे हैं जो वक्त लेते हैं शुरू होने पर। अगर 6 महीने में थोड़ी सी 1-2 कोठरियाँ ही बनाई जाएं तो फिर उन्होंने फिर आगे बड़ा होना है, उन्होंने मज़ीद वसत अख्तियार करनी है। चंद साल लाजमन तामीर के कामों को लगते हैं। इस सिलसिले में एक उनकी मदद हम कर सकते हैं। ऐसे मालिकान जिनको इस वक्त तौफीक नहीं है ज़्यादा रुपया खर्च करने की, उनकी 2 तरह से मदद हो सकती है। अव्वल तो ये कि वो अपने मसाइल पेश करें और मशवरा मांगें कि इन मसाइल को हम किस तरह हल कर सकते हैं। जहाँ तक जमात के वसाइल हुए, जहाँ तक तौफीक हुई, इंशाल्लाह ताला ऐसे मामलात में जो वाकई अपने अंदर जवाज रखते हों नरमी भी की जाएगी और रहनुमाई भी की जाएगी और जहाँ तक मुमकिन हुआ मदद भी की जाएगी। दूसरा पहलू ये है सस्ते मकान तामीर करने के लिए इंतजामात करना। इस सिलसिले में कुछ काम तो ऐसे हैं जो पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। कराची में हमारे एक अहमदी इंजीनियर हैं मुअम्मर दोस्त सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह साहेब, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में सस्ते मकान बनाने का एक मंसूबा शुरू किया जो सीमेंट के बग़ैर और पक्की ईंटों के बग़ैर बनाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर स्टेइंग पावर यानी बाकी रहने की ताकत इतनी है कि मशरकी पाकिस्तान के सैलाबों को भी वो बर्दाश्त कर गए और वहाँ की बारिशों को भी, बावजूद इसके कि उनमें कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो उनसे मैंने मुलाकात की थी, वो बड़े बहुत मुअम्मर हो चुके हैं और उनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल है, मगर जहन माशाल्लाह बहुत रोशन है और वो तकलीफ़ करके मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए और तमाम पहलुओं पर उनसे गुफ्तगू हुई और जहाँ जहाँ वो मकान बने हुए हैं आज मौजूद हैं उनकी तहकीक के लिए मुकर्रर किया जा चुका है कि दोस्त इंजीनियर जाएँ और उनका जायज़ा लें। वो मकान बनाने की टेक्निक अगर मज़ीद डेवलप की जाए, मज़ीद उसको तरक्की दी जाए तो ईंटों का ख़र्च निसब से भी कम बल्कि 1/3 रह जाता है। और उसके अलावा ऐसे मकान गर्मियों के नुक्ते निगाह से बहुत ठंडे और बेहतर होंगे। और उनका यह फरमाना था कि इन मकानों के ऊपर 2 मंजिलें भी बनाई गई हैं और वो ठीक हैं। इसी तरह ये जायज़ा भी लिया जा रहा है कि सस्ती छतें किस तरह बनाई जा सकती हैं देरपा और सस्ती और हमारे मौसम के हाल लिहाज से ठंडी रहने वाली छतें। चुनाचे हमारे अहमदी इंजीनियर्स ने इस सिलसिले में भी काम शुरू कर दिया है। बाज़ ऐसी कंपनियां भी इल्म में आई हैं जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ वसी पैमाने पर मकान बनाकर देती हैं अगर उनसे ठेका किया जाए। और एक मकान जो 800 मुरब्बा फुट का हो वो तकरीबन 75,000 से 80,000 रुपए तक अगर उनसे ठेका हो तो वो बना देंगे। और आम गरीबाना ज़रूरियात के लिए 500 मुरब्बा फुट तक भी मकान काफ़ी हो सकता है। और कमरों की साख्त इस तरह बनाई जाए कि एक कमरे में घर सिमट जाए और जलसे के लिए एक वसी कमरा खाली कर दिया जाए और साथ उनके गुसल खाना सारी चीज़ें शामिल करके ये अंदाज़ा है। तो उस कंपनी से भी गुफ्तगू शनीद की जा रही है। अगर ऐसे अहमदी अहबाब जो इस स्कीम में शरीक होकर अपना मकान बनवाना चाहें वो अपने इरादे से मुतले कर दें तो फिर बियुतुल हम्द के मकानों के अलावा एक बड़ी तादाद इन इनफरादी मकानात की ऐसी मिल जाएगी जिसके नतीजे में बड़ी कंपनियां काम को हाथ में लेने पर आमादा हो सकती हैं। अलावा जी भी मैं अहमदी इंजीनियर्स को एक दावत आम देता हूँ कि जमात अहमदिया की खसूसी ज़रूरियात और रव्वा के माहौल और रव्वा के मुआशरे और रव्वा के मेहमान नवाजी के तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर वो नस्बता सस्ते मजबूत सादा मगर आरामदेह घर तजवीज़ करें, और अगर एक्सपेरिमेंटल ज़रूरियात के लिए यानी तजर्बाती ज़रूरियात के लिए कुछ रकम की ज़रूरत हो, कुछ प्लॉट्स की ज़रूरत हो, तो जमात इसके लिए तैयार है। यहाँ रब्बा में इंशाल्लाह ताला उनको सहूलतें मुहैया की जाएंगी, वो तजर्बतन छोटे मकान बना के दिखाएं और जो अल्लाह ताला ने उनको ज़हनी जिला अता फरमाई है उसको खिदमत दीन में इस्तेमाल करें। तो जहाँ तक मकानात का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ आइंदा चंद महीने में हम ज़हनी तौर पर इस बात की तैयारी कर लेंगे कि किस किस्म के मकान बनने चाहिए और सस्ते से सस्ते किस तरीक़ पर मकान बनाए जा सकते हैं। जहाँ तक अपनी रिसोर्सेज अपने ज़राए आमद को इस्तेमाल करके और समेट कर नए मकानों के लिए सरमाया मुहैया करने का ताल्लुक़ है, तमाम मालिकान खाली प्लॉट्स के मकान मालिकान अभी से इन बातों पर गौर शुरू कर दें और जहाँ तक मुमकिन हो अपने लिए सरमाया मुहैया करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बयान किया है जमात की ज़रूरियात अब उनकी ज़ाती ज़रूरियात का इंतज़ार नहीं करेंगी और ना ये हो सकता है मज़ीद, क्योंकि सिलसिले के कामों को बहरहाल तरजीह दी जाएगी और हर अहमदी इस अहद में दाखिल है कि मैं दीन को दुनिया पर मुकदम रखूँगा। इसलिए हर वो अहमदी जो इस अहद बैत में दाखिल है, ख़्वा वो कानूनी लिहाज से हक भी रखता हो, तब भी वो अपना हक दे बैठा है सिलसिले को, और जब भी सिलसिले का मफाद हो तो सिलसिला ये तवक्को रखेगा कि वो अपने ज़ाती मफाद को कुर्बान करें। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस रूह को मलहूज़ रखते हुए किसी बदमजगी के बग़ैर अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से सिलसिले के कामों को जारी फरमा देगा। दूसरी बात मैं ये कहनी चाहता हूँ कि जब से मज़हब का आगाज़ हुआ है, अहले मज़हब की एक ऐसी तकदीर है जिसे कभी आप तब्दील होता नहीं देखेंगे। मेरी मुराद मज़ाहिब के आगाज़ से भी है और मज़ाहिब के उन अदवार से भी है जब अल्लाह ताला ने एहयाए नौ की खातिर उनमें अपनी तरफ से नए इमाम भेजे। जब भी ये वाक़यात हुए हैं, जब भी खुदा की तरफ से बुलाने वाले ने कोई आवाज़ बुलंद की है, हाँ वो साहिब शरीयत नबी था या एक गैर शारे ताबे नबी था, एक वाक़या ऐसा है जो ज़रूर हुआ है और वो ये कि तमाम दुनिया ने उन मानने वालों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है। तमाम दुनिया ने अपना पूरा ज़ोर लगाया है कि इस सिलसिले को नेस्तो नाबूद कर दे और हर कोशिश की गई है और जवाज और अदम जवाज की बहसें छोड़ दी गई हैं, बल्कि वाकया ये है कि एक भी जायज़ कोशिश नहीं की गई बल्कि सारी नाजायज़ कोशिशें की गई हैं इन सिलसिलों को मिटाने के लिए, क्योंकि हक को मिटाने के लिए कोई वजह जवाज है ही नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से बुलंद होने वाली आवाज़ को नेस्तो नाबूद करने के लिए कोई जायज़ वजह हो ही नहीं सकती अकलन, जबकि वो आवाज़ सिर्फ ये कह रही हो कि हमने अल्लाह की तरफ से एक मुनादी करने वाले की आवाज़ को सुना और आमन्ना कह दिया और उसी की तरफ अब तुम्हें बुलाते हैं। ये आवाज़ इतनी मासूम और इतनी बेज़रर है, इस आवाज़ को मिटाने के लिए कोई जायज़ वजह किसी के पास नहीं आ सकती। इसलिए तभी नतीजा ये निकलता है कि झूठ और फसाद और फितने और तमाम नाजायज़ हथियारों को इस्तेमाल करके इन सिलसिलों को मिटाने की कोशिश की जाती है। ये एक ऐसी तकदीर है जो एक तरफ ऐसे सिलसिलों को लाहक है और दूसरी तरफ उनकी सच्चाई का भी ऐलान कर रही होती है और तीसरी तरफ इस बात की भी जमानत देती है कि इस सिलसिले में अब सिर्फ सच्चे ही दाखिल होंगे, क्योंकि झूठों को तौफीक नहीं हो सकती कि किसी बात को कबूल करने के लिए अदना से भी कुर्बानी पेश करें। बड़े मर्द मैदान का ये काम हुआ करता है कि मौत को आंखों में आंखें डालकर देखे और फिर आगे कदम बढ़ा ले। तो वो इलाही सिलसिले जिनके इर्द गिर्द खुदा की तकदीर एक आग की दीवार खड़ी कर देती है, उसमें सिर्फ वही दाखिल होने की जरूरत करते हैं जिन्होंने इब्राहिमी सिफात से विरसा पाया हो, और वो इब्राहिमी सिफात इस बात की भी जामिन हुआ करती हैं कि उस आग को गुलजार बना दिया जाएगा। बस ये एक ऐसी तकदीर है जो जमात के साथ भी एक अटल तकदीर के तौर पर हमेशा जारी रहेगी। इस जमात में कमजोर दिलों का काम नहीं है, इस जमात में उन लोगों का कोई काम नहीं जो अपने रब पर तवक्कुल नहीं रखते, जो खुदा की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान देने कर देने के लिए दिलो जान से आमादा नहीं है। इस जमात में तो सिर्फ वही लोग आएंगे और वही रह सकते हैं जिन्होंने एक फैसला दाखिल होते वक्त कर लिया था या तजदीद बैत करते वक्त वो ज़हनी तौर पर यह इरादा कर चुके थे कि हमने अपनी जानें, अपनी अम्बाल, अपनी इज्जतें, अपने आबरूएं, अपने अजीज तरीन अकरबा को अल्लाह के हाथ पर बेच दिया है और अब हमारा कुछ नहीं रहा। जो कुछ बज़ाहिर हमारा है ये उस वक्त तक है जब तक खुदा की तकदीर बखुशी हमारे पास रहने देती है। जब खुदा की तकदीर की रजा ये होगी कि ये हमारे पास ना रहे, तो हमारी रजा भी यही होगी कि हमारे पास ना रहे। यही वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है ला अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। जो पहले ही सब कुछ दे बैठे हों उनको खौफ हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर नीयत में खोट हो और इंसान वाकियतन ना दे बैठा हो और जुबानी तौर पर मुंह की बातों के लिहाज से दे बैठा हो, तो ऐसा आदमी हमेशा तरसां और लरजां रहता है कि कहीं वाकियतन नहीं ये कुर्बानी न कर देनी पड़े। लेकिन जो पुख्ते इरादे के साथ अपने रब से एक सौदा करते हैं वो लाजमन खौफ से आजाद किए जाते हैं और तवक्कल के एक आला मुकाम पर उनको खड़ा किया जाता है। चुनांचे इस वाकया का सबसे ज्यादा हसीन और दिलकश नजारा दुनिया ने जंगे बदर के मौके पर देखा, जब कुफारे मक्का का एक एलची मैदान का जायजा लेने के लिए आया, यानी मुसलमानों के कैंप का जायजा लेने के लिए आया, तो उसने वापस जाकर एक रिपोर्ट पेश की। उसने कहा कि मैं वहां कुछ लंगड़े देख के आया हूं, कुछ कमजोर देख के आया हूं, कुछ बूढ़े देख के आया हूं, कुछ बच्चे देख के आया हूं, कुछ ऐसे देख के आया हूं जिनका ऊपर का बदन नंगा है, कुछ ऐसे देख के आया हूं जिनके हाथ में लकड़ी की तलवारें हैं, कुछ ऐसे देख के आया हूं जिनके पास टूटे फूटे हथियार हैं। ये वो लोग हैं और तादाद भी उनकी बहुत कम है, तादाद उनकी 313 है तुम्हारे मुकाबले पर। ये बातें वो बयान कर रहा था और सुनने वाले खुश हो रहे थे कि यकीनी फतह की खुशखबरी दी जा रही है, लेकिन देखने वाले ने नतीजा कुछ और निकाला। उसने कहा कि मैं ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हें वापस जाने का मशवरा देता हूं, क्योंकि तुम्हारे मुकद्दर में यकीनन शिकस्त लिखी गई। बड़े ताज्जुब से उन सरदारों ने उससे सवाल किया कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बातें कुछ और बयान कर रहे हो और नतीजा कुछ और निकाल रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं नतीजा ठीक निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां 313 जिंदा नहीं देखे, 313 मौतें देखी हैं जो तुम्हारे मुकाबले पर निकली। उनमें से हर एक के चेहरे पर यह आज़म लिखा हुआ था कि मैं मरकर वापस जा सकता हूं, उसके सिवा मैं अब यहां से इस मैदान से नहीं टलूंगा। तो वो लोग जो मौत का इरादा करके एक मुर्दा की शक्ल में दुनिया में निकले हों, उनको दुनिया में कोई नहीं मार सकता। इंसान की तलवार उनको नहीं मार सकती, उनकी अपने जमीर की आवाज उनको खत्म कर चुकी होती, उनका अंदरूनी फैसला उनको मार चुका होता है। इसलिए उसने कहा कि इन मौतों पर तुम शिफ़ा नहीं पा सकते, ये मौतें हैं जो तुम्हें हलाक करेंगी। और ऐसा ही हुआ। कितना सही अंदाजा था उस अंदाजा लगाने वाले का और कितना ज़हीन इंसान था। और ये वो तकदीर है जो हमेशा से जारी रही है, और उस तकदीर का एक लाजमी नतीजा है जो मैंने बयान किया। जब भी इलाही जमातें अपना सब कुछ खुदा के हजूर पहले अहद में ही सुपुर्द कर चुकी होती और अपना कुछ रहने नहीं देती, तो ये वो कंगाल हैं जिनके ऊपर दुनिया के अजीम तरीन मुतमवल इंसान भी फतह नहीं पा सकते। ये वो निहत्ते हैं जिनके ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसल्ला कौम, सबसे ज्यादा मुसल्ला और हथियारबंद कौमें भी फतह नहीं पा सकती, क्योंकि इन लोगों के मुकद्दर में शिकस्त नहीं रहती बाकी। और अल्लाह इस बात की जमानत देता है कि ये शिकस्त इनके नसीब में नहीं लिखी जाएगी। फिर एक और तकदीर भी इनके हक में जारी होती। ये तो एक दुनियादार इंसान लेकिन ज़हीन व फ़हीम इंसान का फैसला था कि ऐसी कौमें शिकस्त नहीं खाया करती जो पहले ही सब कुछ फिदा करके निकली हों। जिस तरह तारिक ने कश्तियां जलाई थी, तो दुनिया वाले ये समझते हैं मुफक्किर के कश्तियां जलाने के नतीजे में उसको फतह नसीब हुई। लेकिन अहलुल्लाह के लिए एक और तकदीर भी काम करती है, और वो ये है कि अल्लाह ताला की नुसरत उनको कभी नहीं छोड़ती। वो इस यकीन कामिल के साथ जिंदा रहते हैं कि बावजूद इसके कि हम सब कुछ अपने खुदा को दे बैठे हैं, हमारा खुदा भी अपना सब कुछ हमें दे बैठा है, और हमारे अमवाल अब सांझे हो चुके हैं, जो कुछ हमारा है वो खुदा का हुआ है, लेकिन जो कुछ खुदा का है वो भी हमारा हो चुका है। और जिस कौम के साथ अल्लाह ताला की कुव्वत और गलबे की तकदीर शामिल हो जाए, उस कौम को दुनिया में कौन शिकस्त दिया करता है, कौन शिकस्त दे सकता है। इसलिए इस यकीन कामिल के साथ वो कौमें जिंदा रहती हैं, और ये यकीन हमेशा सच्चा निकलता है। मुड़कर आदम के आगाज से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक की, और फिर अपने जमाने में अपनी तारीख का मुतालिया करके देखें, किस दिन खुदा ने अपने इन कमजोर बंदों को अकेला छोड़ा है, किस दिन खुदा ने इजाजत दी है इन निहत्ते दरवेशान इलाही को दुनिया वालों को शिकस्त देने की तौफीक मिले। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी आइंदा ऐसा होगा। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुआओं से काम लें, हमारा हथियार दुआएं हैं, हमारे तमाम असबाब का शहतीर दुआएं हैं। ये असबाब के बाले इस दुआ के शहतीर पर लटके हुए हैं। अगर दुआओं से आप गफलत नहीं करेंगे, अगर आपका तवक्कुल कामिल होगा, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह ताला की नुसरत आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये एक अटल तकदीर है जो लाजमन आपके लिए जाहिर होगी और पहले भी हमेशा जाहिर होती रही। खुदा एक ऐसा वफादार दोस्त है कि दुनिया में उस जैसी वफा कभी किसी ने नहीं देखी। वो एक ऐसा ताकतवर दोस्त है कि उसके मुकाबले पर दुनिया की सारी ताकतें हेच हो जाया करती हैं, और इस तरह जिस तरह तिन सैलाब के मुकाबले पर तिनके बह जाते हैं, इस तरह दुनिया की ताकतें उन खुदा की ताकत के मुकाबले पर बह जाया करती हैं, उन कोई निशान नहीं मिटती। कभी वो खाक बनकर उड़ जाती हैं, कभी वो अपनी ही आग में भस्म हो जाया करती हैं। हजार तदबीरें हैं खुदा की एक तकदीर में जो अपना काम कर दिखाया करती है। इसलिए आप साबित कदम रहें, आप अपने तवक्कुल के मुकाम से ना हटें, आप अपनी दुआओं में इंतहा कर दें, फिर देखें किस तरह मेरे मौला की नुसरत आपकी मदद के लिए दौड़ी चली आएगी। चंद दिन सब्र करके देखें, लाजमन ये नजारा आप देखेंगे कि ये जो आफात और मसाइब के बादल हैं, जो खून बरसाने की धमकियां दे रहे हैं, इन्हीं में से कतरात मोहब्बत टपकेंगे आपके लिए। इन जान लेने वालों में जान फिदा करने वाले दोस्त आपके लिए पैदा होंगे, और अहमदियत के गलबे की तकदीर अटल तकदीर है, इसने जारी और सारी रहना है, और कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इस तकदीर को बदल सके।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ஃபலாஹாதியலா
ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله